നമോ സിദ്ധാടം നമോ ആയതിയാടം നമോ ഉവഛായാടം നമോ ലോയേ സർവസാഹൂരം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമോ ഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാദ്യോ ജൈന ധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവ മംഗള മാംഗല്യം സർവ കല്യാണ കാരകം പ്രധാനം സർവ ധർമാണാം ജൈനം ജയതു ശാസനം ജൈനം ജയതു ശാസനം ജൈനം ജയതു ശാസനം തീന ഭുവന മേ സാർ വീത രാഗ വേ ജ്ഞാനതാ ശിവ സ്വരൂപ ശിവകാർ तो हम लोग छह ढाला की तीसरी ढाल पर सात तत्वों के विस्तृत स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम आश्रव तत्व पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चर्चा कर चुके हैं। अभी तक की चर्चा से किसी के कोई भी प्रश्न? किसी को भी कोई प्रश्न तो हम आज आगे बंद तत्व पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हमने जब ये आश्रव तत्व की बात करी थी तो हमने ये देखा था कि जो योग है वो योग द्वार है। उस योग द्वार से जब भी आत्मा इन योगों का अवलंबन लेता है तो उसके प्रदेशों में कंपन होता है और आत्मा में योग शक्ति होती है जिससे वह कर्मों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। और यदि उसके साथ मिथ्यात्व अविरति।
अनुपम जी, आपकी आवाज बदल गई इतनी देर में।
बदल गई यानी कैसे?
पहले एकदम क्लियर आती थी, अभी ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर से आती है, परंतु मुझे तो, मैंने अपना वॉल्यूम कर लिया है थोड़ा हाई, तो मुझे तो सुनाई देता है। दूसरे जो है सभा में, हम टोटल 9 जने हैं, तो सब बोलिए कि आपको बराबर लगती है, अनुभव कीजिए आवाज।
आप लोग सुन सकते हैं मुझे? हेलो
तुषार भाई, प्रीति बेन, तमने संभळाय छे बराबर?
हाँ हाँ हाँ, आवे छे आवाज बराबर छे।
ओके
ओके, ठीक है। या हमने इसमें देखा था कि मिथ्या अविरति अरुकषाय प्रमाद, ये चार चीजें, मिथ्यात्व अविरति कषाय और प्रमाद, योग से जब कर्म आएंगे और उनको ये चार चीजें यदि रास्ते पे मिलती हैं तो वो कर्म ठहर जाते हैं और ये तभी होगा जब आत्मा का उपयोग आत्मा के अलावा बाहर कहीं पर होगा। तो आत्मा का उपयोग आत्मा में नहीं रहे तो ये सारे काम यहाँ पर बनते हैं आश्रव के। ठीक है, तो आश्रव के पांच द्वार बोले थे, राइट? और फिर हमने देखा था उसमें उपयोग की चर्चा करके इन द लास्ट क्लास के, कैसे चित्त विवर्तन से वो बंध भी बढ़ता है, संसार का आश्रव भी बढ़ता है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो बंध तत्व की चर्चा करेंगे और बंध तत्व अब हमको समझना होगा कि कितने टाइप का होता है। तो उसको समय सारथी में आचार्य कुनकुन देव ने बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल लेके उठाया है। जब भी कुनकुन आचार्य देव ऐसे बंध की विस्तृत चर्चा करने को वहां तैयार हुए तो उन्होंने एक कुश्ती करने वाले पहलवान को खड़ा किया, वेरी यू नो, वो अपनी बॉडी बिल्डिंग पर, अपनी अखाड़े पर वो खड़ा हुआ है। वहां पहले अखाड़े होते थे, जिम्स नहीं होते थे, तो वहां पर बहुत सारी रेत होती है और रेत के ऊपर कसरत करते हैं वो, राइट? तो उन्होंने एक आदमी को वहां पर खड़ा किया और बोला कि अब ये जो आदमी है ये रेत के ऊपर, धूल के ऊपर अपने हाथ पैर को हिलाएगा, बहुत कसरत करेगा, राइट? और उसके कारण बहुत सारी धूल उड़ रही है, राइट? ऑब्वियस है, रेत के ऊपर आप बहुत तेज कसरत कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैर भी चला रहे हैं, तो नीचे की धूल ऊपर उड़ के आएगी।
हाँ
बट उन्होंने नाउ इस आदमी के दो वेरिएशन लिए। एक बोला कि ये वाला जो आदमी है एकदम एकदम जस्ट नहाकर ही आया हो, मान लीजिए इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर है, और दूसरा आदमी उसकी बॉडी में ऑयल लगा हुआ है, उसमें तेल लगाया हुआ है, वो तेल मर्दन है उसकी बॉडी में पूरा,
हाँ
राइट। तो इन दो
हाँ
केसेस में उन्होंने बोला कि देखो दोनों में कसरत तो दोनों करेंगे, एक्सरसाइजेज वुड बी ऑफ सेम काइंड, एक सी ही होंगी जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी, हाथ
हाँ
एक साथ ऐसे ही हिलाएंगे, और दोनों में धूल भी सेम ही उड़ेगी लगभग, राइट। बट
हाँ
फिर भी दोनों की रियलिटी में रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर रहेगा। एक की पूरी बॉडी धूल भरी हो जाएगी और एक की पूरी बॉडी जैसी थी वैसी रहेगी।
हाँ
तो क्वेश्चन का कंक्लूजन ये निकला कि यार वो दोनों काम तो एक सा कर रहे हैं, तो देखो क्षेत्र एक है, दोनों की बॉडी एक सी है, दोनों की क्रियाएं भी एक सी हैं, दोनों एक साथ ही हाथ पैर उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, तो फिर ये धूल चिपकने का कारण कौन है? क्या वो क्रिया है? क्या वो
नहीं
धूल है? क्या वो जगह है जहां पर वो लोग हैं, या उनकी बॉडी है? वॉट इज द रीजन दैट इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग द जितनी भी धूल के कण है, जितनी भी डस्ट है, टू बी अटैच्ड टू देयर बॉडी, राइट। तो चार सिचुएशन, चार क्वेश्चन खड़े हुए वहां पर। इज इट द प्लेस, क्या वो जगह है, अखाड़ा, जिसके कारण उनको धूल चिपक रही है कि नहीं? एक को नहीं चिपक रही, वो भी उसी क्षेत्र में है, तो वो अखाड़ा जो है वो तो नहीं हो सकता, वो व्यायामशाला कैन नॉट बी द रीजन वो धूल के होने का, करेक्ट।
हाँ
सो क्षेत्र क्षेत्र से बंध का और आश्रव का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड, ठीक है चलो, उनकी बॉडी तो हो सकती है, बॉडी के कारण कि नहीं, बॉडी तो दोनों के पास है, हाउ कैन द बॉडी बी रीजन? बॉडी भी रीजन नहीं है दोनों की, एल्स नहीं तो दोनों को होना चाहिए, करेक्ट।
हाँ
थर्ड, सो इज इट जो धूल है बाहर वो रीजन है? बाहर का जो निमित्त है, इज इट दैट रीजन बिकॉज ऑफ विच की वो चिपक रही है कि नहीं? धूल तो दोनों के लिए एक सी उड़ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो दोनों जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कसरत कर रहे हैं, वो कारण होगा बंध का कि नहीं? दोनों के तो सेम क्रियाएं हैं, दोनों एक सा काम कर रहे हैं,
हाँ
राइट। तो
बराबर
क्षेत्र कारण नहीं, द्रव्य कारण नहीं, परद्रव्य कारण नहीं, खुद की बॉडी कारण नहीं है, बाहर की धूल कारण नहीं है, क्षेत्र कारण नहीं है, और खुद की शारीरिक चेष्टाएं कारण नहीं है, क्रियाएं कारण नहीं है मतलब। तो फिर इस धूल के चिपकने का कारण क्या है? वॉट इज द रीजन? कि हमने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि एक व्यक्ति के तो वहां पर पूरा शरीर एकदम साफ निर्मल स्वच्छ है, और दूसरे व्यक्ति के शरीर में तेल लगा हुआ है, चिकनाई लगी हुई है। तो अब पता पड़ा कि वो शरीर कारण नहीं, वो धूल कारण नहीं, वो कसरत कारण नहीं, वो क्षेत्र कारण नहीं, कोई कारण है, तो वहां पर वो चिकनाई जो धूल को अपने प्रति अट्रैक्ट करती है और रोक लेती है, बराबर।
हाँ
ऐसे
बराबर
ही बंध के लिए क्षेत्र कारण नहीं, आत्मा कारण नहीं, कर्म कारण नहीं, और शारीरिक सारी चेष्टाएं ये भी बंध का कारण नहीं। तो फिर क्या कारण है कि इस आत्मा में और सिद्ध आत्मा में या अरेहंत आत्मा को हम माइन्यूटली देखें, तो अरे तो मुझे ये दिखा कि वहां पर तो एकदम स्वच्छ निर्मलता है और ये वाले आत्मा में मलिनता है, ये वाले आत्मा में कुछ चिकनाई है कषायों की, वो कषायों की चिकनाई को बंध का कारण होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक इसका एक बैकड्रॉप है, एक हल्का सा बैकड्रॉप है। अब हम आगे छह डाला के आधार से हम इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक ये पढ़ा था, यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अभिरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। ये आश्रव तत्व का विश्लेषण था। फिर आधी लाइन में भी उन्होंने एक सीख दी पंडित दौलत राम जी ने, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंध विधि सो सो बंधन का बहुना सजिए। तो पहली लाइन में उन्होंने सीख दी कि ये जो मैंने आश्रव बोले है ना, ये आश्रव ही आत्मा को दुख के कारण है, इसलिए इनको तजो, इनको छोड़ो। क्या होता है इनसे, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। कि आश्रव से आए हुए जो कर्म है ना, जो कि मिथ्यात्व अविरति कषाय और प्रमाद के जरिए जीव के प्रदेशों से बंध जाते हैं नियत काल के लिए, इस ऐसे बंधन से कभी मत सजो। डोंट एवर फॉल प्रे टू दिस बंधन। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका इंजीनियरिंग देखेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमने जब आश्रव की चर्चा करी थी, हमने डिस्कस किया था कि गेट एक है, कौन सा गेट है, कर्मों के आने का गेट क्या है,
मिथ्यात्व।
नो 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 नो, मिथ्यात्व नहीं। पहली लाइन में जो वर्ड आया है इसमें, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, आगे क्या है, यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा। योग, योग इज द गेट, योग वो रास्ता है जहां से कर्म आएंगे। ठीक है, तो दो चीजें अब हम करेंगे, हम पांच चीजों को हम दो में डिसाइड कर लेंगे, हम दो में विभाजित कर लेंगे, वन इज योग एंड वन इज कषाय। ठीक है, दो चीजें हैं, योग है और कषाय है। ठीक है, टू थिंग्स, योग इज द गेट, ठीक है, एंड जो कषाय है वो गेट पर खड़ा हुआ फेलिसिटेटर है, मतलब ही इज द होस्ट। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट जस्ट गिव मी टू सेकेंड्स, जस्ट हेलो, हाँ सॉरी, यस, सो योग इज द गेट, और उस गेट पर अब हम लेट्स इमेजिन
एंट्री गेट है, वचन का,
हाँ लेट्स एंट्री गेट। ठीक है, तो नाउ वील इमेजिन अ सीन, ये वाला हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इस एग्जांपल से, बट वील रिक्रिएट अ सीन ऑफ वेडिंग हम एक शादी का सीन क्रिएट करते हैं यहाँ पर. सो लाइक से यहाँ पर शादी है आपके यहाँ, राइट? सो द फर्स्ट डिसीजन दैट वी हैव टू टेक इज, वो सारे अरेंजमेंट्स को एक साइड जाने देते हैं, वी आर ओनली कंसर्न विद द गेस्ट हु आर कमिंग, राइट? हमारे पास गेस्ट जो आएंगे वो कौन कौन आएंगे, राइट? तो बेसिक टू फंक्शन है शादी के, एक तो इनवाइट करना गेस्ट को एंड देन वो आ जाए तो उनकी हॉस्पिटैलिटी, राइट? यस, टू थिंग्स वी आर आइडेंटिफाइंग टू फंक्शंस. वन इज द इनविटेशन, राइट? यू हैव टू इनवाइट गेस्ट. एंड द सेकेंड इज द हॉस्पिटैलिटी वंस दे अराइव्ड, राइट? एवरीबडी इज विद मी, राइट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिसीजन लिए जाएंगे हमारे दो. एक तो किस किस को बुलाना है, राइट? हुम ऑल आर टू बी कॉल्ड, एंड उसमें भी कितने बुलाना है, लाइक विल आई राइट लाइक मिस्टर जैन एंड फैमिली, और आई विल ओनली राइट मिस्टर जैन सो दैट ओनली ही कम्स एंड नॉट हिज एंटायर फैमिली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टू थिंग्स, पहले तो किस किस को बुलाना है, एंड नाउ उसको भी उसकी पूरी फैमिली के साथ बुलाना है कि नहीं अकेली वो ही आएगा तो चलेगा, और जस्ट माय फ्रेंड बिकॉज ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय कॉलेज फ्रेंड बट नॉट हिज एंटायर फैमिली बिकॉज आई डोंट नो, आई ओनली नो हिम, राइट? सो किस किस को बुलाना है और उसमें भी कितने बुलाने हैं, राइट? टू डिसीजन, फर्स्ट हु ऑल आर टू बी इन्वाइटेड, एंड इन दोज आर बींग फाइनलाइज, इन दोज ऑल्सो हाउ मेनी एग्जैक्टली आर टू बी इन्वाइटेड, राइट? ये वाला काम है प्रिलिमिनरी, ये वाला काम शादी शुरू होने के पहले हो जाएगा, राइट? तो बहुत पहले होगा ये काम, राइट? सिमिलरली योग का काम है दीज इन्विटेशंस, योगा का काम है ये इन्विटेशंस देना. योग क्या करेगा, सिंपली इट विल सेंड आउट द इन्विटेशंस के ओके 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 आई वॉन्ट, उसने अभी अभी क्या किया है, एक जीव की हिंसा करी है, सो सेंड आउट द इनवाइट फॉर अताता कर्म, आई वॉन्ट असाता कर्म, ओके साथ में नीच गोत्र भी आ जाओ, ओके ओके दूसरी बुरी वाली आयु भी आ जाओ, नरक वाली, और अंतराय, डेफिनेटली अंतराय यू कम, और आई वॉन्ट ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम रोल पर आ जाइए आप, और चारित्र मोहिनी से तीव्र क्रोध वगैरह भी सब आ जाओ जल्दी से. सर इन्वाइटिंग द प्रकृति, कौन कौन आएगा, राइट? सो यू आर सेंडिंग आउट इन्विटेशन टू एट कर्मास,
अनुभव जी आवाज नहीं आ रही,
अनुभव जी ड्रॉप हो गए, लेट मी चेक.
हाँ, ड्रॉप थे, यस.
हेलो,
हाँ अनुभव जी, आप ड्रॉप
आई एम
हो गए
सॉरी।
थे।
हाँ, कितने देर पहले ड्रॉप हो गया था मैं?
आप
व्हाट वाज आई सेइंग?
हमने बस हमने वो एच कर्मोज को इनविटेशन भेजा, बुलाया
हाँ
वहां तक।
हाँ तो कर्म तो योग ने कर्म को इन्विटेशन भेजा,
हाँ बस
राइट?
वहां तक
एंड ये भी बताया कि कितने कर्म आएंगे। सो जो इनविटेशन है कि कौन कौन से आएंगे, दैट इज प्रकृति बंध, एंड कितने आएंगे, दैट इज प्रदेश बंध। ठीक
हाँ
है, फाइन। अब
वेरी
यहाँ
नाइस।
तक,
एनी अदर
हेलो,
क्वेश्चन था? हाँ
एनीबडी हैज अ क्वेश्चन?
नो, वेरी नाइस, इनविटेशन
हाँ
इज
हाँ
गुड।
यस। सो नाउ, अब लेकिन देखिए, ये इनविटेशन तक देर इज नो प्रॉब्लम। ये वाला फंक्शन, जो इनविटेशन वाला पार्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, बट यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज व्हाई? देर इज ऑलवेज अ चांस। आपने 100 लोगों को इनवाइट किया है, इट डजेंट मीन कि 100 लोग ही आएंगे। 80 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, एट टाइम्स 110 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, राइट? सो नाउ, सिंस यू हैव गिवन इनविटेशन, यू हैव इनविटेशन टू सर्टेन पीपल कि ये वाली ही कर्म चाहिए मुझको, क्योंकि मैंने ऐसा वाला ही शुभ या अशुभ योग किया है और इतने ही कर्म चाहिए। तो प्रकृति और प्रदेश बंध इज सॉर्टेड, बट यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शादी को तो अभी टाइम है ना। तो आपने आज तो इन्विटेशन दिए हैं, एंड देन दे विल कम, आप उनको रिसीव करोगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, अवर इनेबिलिटी टू कम। कुछ लोग बोलेंगे कि यार, अच्छे से हमको रिसीव ही नहीं किया। कुछ बोलेंगे आपने अच्छे से फोन ही नहीं किया, हमको अच्छे से बुलाया ही नहीं, यू हैव नॉट गिवन अस इनफ रिस्पेक्ट, राइट? तो अभी तो बहुत सारा इसमें ट्विस्ट बाकी है कि एंड में कितने लोग आने वाले हैं एग्जैक्टली। करेक्ट? सो इट इज
हाँ
जस्ट एन इन्विटेशन। इन्विटेशन तक हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है, राइट? ये
हाँ
वाला इन्विटेशन अरिहंत भगवान भी दे जाते हैं कर्मों को, एंड यू नो कर्मास हैव लिटरली दैट होप ऑफ फाइनली वी आर गोइंग टू द अरिहंतास, बट इट्स ओनली इन्विटेशन लेवल। करेक्ट? सो इट्स
हाँ
जस्ट अ फॉर्म, मे बी अ ट्रैप दैट इज गिवन टू कर्मा बाय अरिहंत परमेष्ठी। ओके, you have been invited to the soul of Arihanta, but that doesn't happen really. So what? कि चलिए, आपने invitation तो दे दिया आपने relatives को। अब वो जिस दिन का invitation दिया है, उस दिन आपके पास आए आए तो उन्होंने क्या देखा कि आप सब तो अंदर होटल में अपने अपने रूम्स में सोए हुए हैं, एंड नो बडी इज बॉदर्ड टू आस्क एनीथिंग टू देम, यू नो, लाइक उनको वेलकम करने का नहीं है, किसी ने पानी तक का नहीं पूछ रहा है उनसे, लग ही नहीं रहा है कि किसी शादी में आए हैं। लाइक देर इज नथिंग, नो बडी इज, यू नो, इवन स्माइलिंग और विंकिंग एट देम, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो दे मे फील इंसल्टेड, एंड दे मे से, यार हमको नहीं आना यहाँ पर, वील जस्ट गो बैक। क्या मतलब है अपनी इंसल्ट खुद कराकर? करेक्ट?
बराबर।
और आप वो लोग आए और आपने बहुत अच्छे से उनकी मेजबानी करी, उनको बुलाया। सो नाउ देर हैप्पी, दे वॉन्ट टू स्टे, दे वॉन्ट टू स्टे। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि यार, हमारा फंक्शन तो 3 दिन का है शादी का, राइट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यार, कुछ गेस्ट तो होंगे जो 2 घंटे बस रिसेप्शन पे आके चले जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 3ों दिन भी रुके, राइट? सो नाउ इट विल डिपेंड ऑन हाउ आप उनकी मेजबानी करते हैं, आप उनको कितना भाव देते हैं, तूल देते हैं, दैट वुड डिफाइन कि वो कब तक रहेंगे, राइट? और कब तक रहेंगे, इतना ही नहीं, कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक
अच्छा ड्रॉप थी ये। हाँ
सचिन भाई, સચિન ભાઈ તમે છો?
હા હા બોલો.
હા, તમે એમને ફોન ઉપર લાવ્યા છો કે કેવી રીતે?
ના ના, એમની મેરે આપણે ઓલા વીઆઈપી છે ને કોલ, આપણે એમાંથી જ કરે છે આજે.
હા, નહીં તો હું પેલો અમારું ઇન્ડિયા એલડી નું છે એની પરથી એમને જો એ કરવું હોય તો એવી રીતે હું લાવી દઉં એમને.
હા, એકચ્યુઅલી લેટ મી જસ્ટ યુ નો ચેક વિથ હિમ. આઈ થિંક બીજે ક્યાંકથી કરતા લાગે છે, લેટ મી ચેક.
ઓકે,
હેલો
અનુભવજી, અભી આપ આ ગયે હો?
I'm so sorry. 2 સેકન્ડ મુજે દીજેગા.
અગર ડ્રોપ હો જાતા હે તો આપકો ફોન પર કોઈ લે આવે આપકો કોન્ફરન્સ?
નહીં, 2 સેકન્ડ સબ શાયદ નહીં હોના ચાહીએ. મેં એક બાર લાસ્ટ મેં ટ્રાય કરતા હું. 2 સેકન્ડ, ગિવ મી 2 સેકન્ડ સર. हेलो हेलो, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ओके, ठीक है. हाँ, सो हम कहाँ पर थे, कहाँ पर ड्रॉप आउट हुआ है आप लोग?
हम वेडिंग के दिन को किसी को वेलकम नहीं करे,
वेलकम
तो चले जाते हैं और वेडिंग के दिन वेलकम करते हैं नाइसली, तो कहीं 3 दिन तक भी रहते हैं.
करेक्ट करेक्ट. तो नाउ हमारी जो हम जो उनकी हॉस्पिटैलिटी देंगे, हम उनको जो होस्ट करेंगे, नाउ दैट विल डिसाइड 2 थिंग्स. ठीक है, आप लोगों को कई को मतलब आई डोंट नो इफ यू हैव हैड एक्सपीरियंस, यहाँ पर चलता रहता है यहाँ पर, तो लाइक वेडिंग इज लाइक बहुत बड़ा एक एडवेंचर काइंड ऑफ, सो यू नो देर वुड बी सम रिलेटिव्स, यू कैन नेवर मेक देम हैप्पी. There would be always some people who will always be, you know, sad with this hospitality or something. They'll have something to complain, right?
Yeah.
So, do kaam honge, right? One is ki wo kitni duration tak rukenge given your hospitality, and second, wo jitni bhi duration ke liye ruk rahe hain, ho sakta hai wo ek ghante ke liye rahe, but wo ek ghante mein itna tufaan macha sakte hain ki aapke 3 days become sore experience. Or they can stay for 3 days and it can be so pleasant that you do not even realize ki they were there in the wedding, right? So do cheeze decide hongi. First is their duration and second is their intensity of participation ki wo kitna cooperate karenge, kind of, right? So there would be always someone who will get angry and you will say ki kya hai, they did not ask me or they did not do this or ye bhi nahi hai. They'll stay for 2 hours, 4 hours, 3 days, but how do they react in those 3 days would also be decided then and there, right? So jab tak yog the to yogon ka kaam tha do cheezon ke invitation mein, ek to invitation kaun kaun aayega और कितने कितने लोगों को वो लेके आएंगे. सो दैट वॉज प्रकृति बंद एंड प्रदेश बंद. बट अब हमारे पास पूरी शादी थी, ठीक है, आत्मा और कर्मों की. सो रास्ते में पगवानी के लिए, मतलब फॉर द वेलकमिंग, वहां पर मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति और कषाय खड़े हुए हैं. हम उनको सिंपली कषाय बोलेंगे, ठीक है? तो नाउ अब फर्स्ट थिंग कि ये कषाय खड़े ही ना रहे उनकी अगवानी के लिए. तो ये जो आपने इतनी लंबी कर्म की, पूरी बारात को बुला लिया है, इट विल फील वेरी 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 डिस्टर्ब एंड इंसल्टेड.
and it will just not say Shadi is cancelled, they'll just go home. That's what happens with Arhant Parmeshri. वो बहुत अच्छे से इनविटेशन भेजते हैं जब वो दिव्य ध्वनि में वचन योग का प्रयोग करते हैं, जब वो विहार करते हैं तो काय योग का प्रयोग करते हैं, तो उनके आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है. योग वेरी हैप्पीली सेंड आउट इन्विटेशन, चलो भैया आ जाओ सब आ जाओ, यहाँ पर बंद होगा आज. बट द मोमेंट दे अराइव तो कर्म आर लाइक यू नो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है कर्म लोगों की, सो दे डू नॉट टेक इंसल्ट and they do not pardon, okay? So when they arrive, तो वो वहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई कषाय, कोई प्रमाद, कोई यहाँ पर अविरति, कोई है ही नहीं मिथ्यात्म हमको वेलकम करने के लिए, हमारी कुछ पूछने के लिए, भैया कैसा रहा आपका रास्ता, सब कुछ ठीक रहा कि नहीं रहा, everything is good, how are you feeling, take rest, take water. There is no one who is even doing the formality. So they feel very insulted and they just leave. It is called Iryapath Ashram. जब वो जिस रास्ते आते हैं उसी रास्ते से सीधे चले जाते हैं. Why? Because nobody asked them to stay. And they had the self-respect of highest order. Right? So that's the first kind of ashram that happens when you have yoga, but when you don't have kashaya to welcome those, all the party that has come to your soul. That happens with Arhant Parmeshri, कि उनके योगों का हलन चलन है तो definitely invitations तो गए हैं और वो लोग ने accept भी किए होंगे, वो आए भी होंगे. But the moment they come and they see, they do not see there any smiling face welcoming them. They just get pissed off and they just leave. कि नहीं रहना हमको यहाँ पर. तो कर्म आए, उन्होंने देखा एक समय के लिए कि यहाँ तो कोई कारण ही नहीं है, रोकने वाला ही नहीं है. And they just went off. That is called Prakriti Pradesh Band. And this kind of ashram is called Iryapath Ashram. Right? This happens to those who only have yoga but no kashaya. Koi kashaya nahi hai, sirf yoga hai. Theek hai? But now, then, ab hum logon ne bhi kuch kaam kiya. Hum logon ne bhi, ab hum arhant to nahi hai. But we also have man, vachan and kaya. So we also sent out invitations. And when karma came, now they see a very beautiful decorated picture. अरे देखो मिथ्यात्व भी सजाया है, अरे कषाय भी है साथ में, अविरति है, प्रमाद है, सब कुछ है. So they have, you know, like the full party mood, they stay over, they decide कि okay, we will stay for these many days, these many years, these many sagas. That would be called sthiti bandh. कि हम आपकी hospitality से बहुत खुश हैं, हम इतने साल तक रहेंगे. सो दैट इज कॉल्ड द स्थिति बंध. जो आए हुए प्रकृति और उनकी क्वांटिटीज हैं, जब वो ये डिसाइड करती हैं कषायों को देखकर, मिथ्यात्व प्रमाद को देखकर, कि हम कितने काल तक रहेंगे इस जीव के साथ, दैट इज कॉल्ड स्थिति बंध. स्थिति मीन्स ड्यूरेशन, कितनी स्थिति के लिए वो रहेंगे. ओके
बराबर.
और स्थिति में भी बिवेयर, मतलब आप एकदम तैयार हो जाइए कि वो ज्यादा ही खुश हो गए आपकी हॉस्पिटैलिटी से, इसलिए आपके साथ रुक रहे हैं कि दे हैव बीन मोर इंसल्टेड बिकॉज ऑफ योर हॉस्पिटैलिटी, तो सब काम बिगाड़ने के लिए रुक रहे हैं. सो देयर कैन बी टू मोटिव, राइट? सो वन कैन बी दैट ओके, वी आर वेरी हैप्पी विद योर हॉस्पिटैलिटी, वील जस्ट यू नो make this function a grand success. We will be with you and they will be like the happy story of your entire event. But what if unko koi baat itni buri lag gayi hai and they want to just ruin everything and that's why they're staying. So now this will be called anubhag bandh. Ek to kitni duration ke liye rahenge aur jab tak rahenge unka shor kitna rahega, unka influence kitna rahega. Jaise example ke liye, लेट्स से कि मेरे पास अभी असाता वेदनीय में सिर दुखने वाला कर्म आया, ठीक है? तो सिर दुखने वाले कर्म में क्या होगा? सिर दुखेगा, राइट? तो एक घंटे के लिए बस आया है, सिर्फ एक घंटे के लिए, देयर इज हेडेक टू मी, बट एक घंटे का तो स्थिति बंध कितना हुआ? 1 आवर. इट इज गोइंग टू स्टे ओनली फॉर 1 आवर. बट उस एक घंटे में उसको अनुभव उसका इतना तीव्र है कि मेरा पूरा सिर एकदम फटा जा रहा है. आई जस्ट कैन नॉट बियर दिस पेन, इट्स अनबियरेबल. और कई लोगों को होता है कि एक वीक तक हेडेक चलता है बट इट्स सो माइल्ड दे डोंट माइंड इवन, करेक्ट? तो उनकी ड्यूरेशन इज लॉन्ग बट अनुभाग इज वेरी लिटिल. अनुभाग इज द इंटेंसिटी, राइट? तो देखो चार प्रकार के बंध हुए. योग ने इनविटेशन दिए कौन कौन आएगा और कितने आएंगे, दैट इज प्रकृति बंध एंड प्रदेश बंध. एंड देन यदि कषाय और मिथ्यात्व वगैरह उनको वेलकम करने के लिए मिलते हैं जब वो आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट वुड बी कॉल्ड इरियापथ आश्रम, एंड ऑफ द स्टोरी. कुछ नहीं हुआ, देर इज नो हार्म इन दिस आश्रम, क्योंकि ये आश्रम बंध में ट्रांसलेट नहीं होता है, राइट? सो दिस इरियापथ आश्रम इज नॉट हार्मफुल एंड देयरफॉर इट इज एक्सेप्टेड दैट इवन अरिहंतास हैव इट एंड देर इज नो क्वेश्चन इन देयर sanctity, in their arihanthood, in their godhood because of this ashram. Is ashram ke karan unke bhagwan hone par koi question mark lagta ho? No. Because this is completely harmless. Right? You are coming and you are just going, you are not staying. But kahani badal jati hai jab aapne invitations bhi de diye, wo log aa bhi gaye apne apni sankhya mein, and then there you are to invite them. अब जब आप उनको इनवाइट कर रहे हो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. दे विल डिसाइड टू थिंग्स कि हम इतने टाइम तक रहेंगे, दैट वुड बी स्थिति बंध, एंड हम इतनी इंटेंसिटी से रहेंगे, इतने अनुभाग से रहेंगे, दैट वुड बी अनुभाग बंध. तो मूल जो बंध के क्रक्स होते हैं, बंध जो इम्पोर्टेंट कहलाता है, वो ये होता है स्थिति और अनुभाग. देयरफॉर कषाय बंध का मूल कारण है, योग की प्रवृत्ति से कुछ फर्क ऐसा नहीं पड़ता है यदि कषाय नहीं हो तो. और कषाय है तो फिर आपको योग में भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे हमारे महामुनिराज करते हैं, कहीं जाके वो पद्मासन में बैठ जाते हैं, खड्गासन में, तो दे पुट दैट आसन, वो मन की प्रवृत्ति को रोकते हैं. मन वचन काय तीन गुप्तियों को फॉलो करते हैं, त्रिगुप्ती. क्यों? क्योंकि इन तीन गुप्तियों के नहीं फॉलो करने से ही तो तीन योग के कारण कर्म आ रहे थे. तो अब हम इन तीन गुप्ती में इनके इनको काउंटर अटैक करने के लिए वील नॉट सेंड आउट द इन्विटेशन ओनली, एंड देन देर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ यू नो कषाय वेलकम करेगी कि नहीं करेगी. ठीक है?
हाँ, बराबर,
राइट. तो जो आश्रम बंध में ट्रांसलेट नहीं होता है उसको इरियापथ आश्रव कहते हैं, और जो आश्रव बंध का नियामक होता है, जिसमें बंध होता ही है, वो सांप्रायिक आश्रव कहलाता है. उसको सांप्रायिक आश्रव कहते हैं. इरियापथ आश्रव, सांप्रायिक आश्रव, दो प्रकार का, इरियापथ आश्रव, सांप्रायिक आश्रव. ठीक है? इरियापथ आश्रम जहां पर कर्म आते हैं पर चले जाते हैं, रुकते नहीं है, तो कर्मों की स्थिति और अनुभाग नहीं होता है, वो इरियापथ आश्रम है. और जहां पर कर्मों के स्थिति और अनुभाग भी बंधते हैं वो सांप्रदायिक आश्रम है. दिस इज जस्ट द आश्रम. ठीक है? ये आश्रम का फ्लो है. अब बंध कितने प्रकार का? बंध चार प्रकार का मानेंगे. स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध. ठीक है? अब प्रकृति और प्रदेश बंध अकेले हो तो वो बंध कोई मतलब के नहीं होते, क्योंकि वो अरिहंत के भी एक समय का बंध होता है, राइट? अरिहंत भगवान के जब वो कर्म आ रहा है तो एक समय तो लेगा ना आत्मा में आने में, तो एक समय इट स्टेज बट इट गोज द नेक्स्ट मोमेंट. तो वो आया नहीं आया क्या फर्क पड़ा, उदय देके गया नहीं, अनुभाग उसने कुछ दिया नहीं, वो तो बस आया, इंक्वायरी करी कि कोई कषाय योग है क्या यहाँ पर हमारा दोस्त, नहीं है तो वो चला गया. तो प्रकृति और प्रदेश अकेले हो तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यदि कषाय और योग विद्यमान है, मतलब ये सांप्रदायिक आश्रम है, तो फिर ये चारों बंध एक साथ होंगे. प्रकृति भी आएगी, कितने कौन कौन से कर्म आ रहे हैं, प्रदेश यानी कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, स्थिति कितनी ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं, और अनुभाग कितनी इंटेंसिटी को लेके आ रहे हैं. ये वाली चीजें उसमें चार प्रकार के बंध में पड़ेगी। तो आश्रव दो प्रकार का, वन जिसमें बंध नहीं होता, जो बंध में ट्रांसलेट नहीं होता, एनदर जिसमें बंध में ट्रांसलेट होता है, तो ईर्ष्यापथ आश्रव एंड सांप्रदायिक आश्रव। बंध चार प्रकार का, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण योग है और स्थिति और अनुभाग बंध का कारण कषाय है। हमें जो उदय में आते हैं वो स्थिति और अनुभाग आते हैं इन प्रकृतियों के। तो हम यदि ऐसा, ठीक है मेरे पास अकाता वेदनीय रहा, कर्म रहा, ठीक है, और वो एक साल तक रहा, लेकिन उसका अनुभाग है जीरो, तो क्या इम्पैक्ट है कि उसका उदय आना नहीं आना एक सा है मेरे लिए, राइट? यदि मेरे को हेडेक नाम के कर्म का उदय है लेकिन हेडेक का माइल्ड भी नहीं है, एकदम है ही नहीं हेडेक, हेलो, देन ऑफ व्हाट पॉइंट दैट हेडेक का कर्म, वो कर्म क्या करेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है रहा आए, वो मेरी जगह कौन सी घेर रहा है, वो अपने स्थान पर रह रहा है आत्मा के प्रदेश में, उसने थोड़ा सा एक दो प्रदेश खिसका दिए हो मेरे, या मेरे प्रदेश को खाली करवा दिया हो, ऐसा तो है नहीं। आत्मा के पास आत्मा का क्षेत्र है, कर्म के पास कर्म का क्षेत्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि हम कौन से कर्म है और कितने कर्म है इसको भूल जाए, इसको जाने दें, और यदि हम उनकी स्थिति और अनुभाग को ही कंट्रोल कर पाए, वी वुड बी हैप्पी, वर्क वुड बी डन, राइट? क्योंकि हम एग्जैक्टली तो अनुभाग और स्थिति को ही फील कर रहे हैं कि कितनी देर तक हेडेक है और कितना सारा हेडेक है, दैट्स ओनली व्हाट आई एम कंसर्न्ड विद, नो? कर्म रहा आए लेकिन उसका अनुभाग नहीं रहे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, इट्स एज गुड एज इट्स नॉट देयर। एंड दैट्स व्हाई हमको कषायों के शमन पर स्ट्रेस किया जाता है, यू कंट्रोल योर कषाय, आप अपने कर्मों की डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाओगे। एंड दैट्स हाउ यू कैन, यू नो, इट्स अ इंजीनियरिंग दैट यू कैन इंजीनियर। आप यदि चाहते हो आपके भविष्य को बनाना, तो आप एक्चुअली डेलिबरेटली और बहुत कॉन्शियसली इसको कर सकते हो। एंड हमारा चरणानियोग पूरा इसी की विधि है, हाउ टू मेक अवर फ्यूचर, देयर इज नथिंग एल्स इन चरणानियोग। वो हैक करते हैं, मतलब इट्स अ हैक, आपको बता दिया कि देखो कर्म कैसे आते हैं, तो आपके हाथ पैर और मन जितना सोचेगा और वाणी जितना बोलेगी, इसके हिसाब से तो अलग अलग टाइप के कर्म जाएंगे। तो आप उल्टे सीधे एक्शंस मत करो, उल्टे सीधे शब्द मत बोलो, तो यू नो, क्योंकि आप यदि तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कि अलग अलग बॉडी मिलती है जीवों को, राइट?
हाँ।
किसी के हाथ पांव टेढ़े हैं, somebody is handicapped, तो इसका क्या कारण है, इसके आश्रव का कारण क्या है, तो ये शरीर नाम कर्म के कारण बनता है, राइट? तो कु नाम कर्म, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण क्या है, कि अभी जो उल्टे सीधे एक्शन करते हैं, मिमिक्री करते हैं, लाइक से चिढ़ाते हैं अपने बॉडी एक्शन से, गंदे गंदे एक्शन करते हैं बॉडी से, तो ऑल दीज। तो अब आप जब काय योग का बुरा अभद्र प्रयोग करते हैं तो अशुभ काया के कर्म आपको बनते हैं, बिकॉज मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, आप भी ह्यूमन बींग है, और वो जो रोड पर बैठा है वो भी ह्यूमन बींग है, बट हम तीनों की बॉडी फॉर्मेशन, कोई बहुत झुका हुआ है, किसी के घुटने सीधे नहीं होते हैं, किसी की गर्दन टेढ़ी रहती है, ऑल दीज आर द, सो वी ऑल आर सेम ह्यूमन बींग्स, बट हम लोगों के अलग अलग क्यों है, इट्स ओनली बिकॉज हम लोगों ने बॉडी के कुछ अभद्र एक्शन किए तो अशुभ होते हैं, और किसी की बॉडी बहुत सुंदर होती है, कान लंबे होते हैं, भगवान तीर्थंकर देव के कान बड़े होते हैं, चेहरा बड़ा गोल होता है, बॉडी में पूरा यू नो सम चतुर्थ संस्थान होता है, व्हाई डज इट हैपन, जब आप इसका बहुत डिसिप्लिन तरीके से यूज करते हैं, राइट? ऐसे ही किसी कोई तुतलाता है, किसी के मुंह से अच्छे शब्द, मतलब वो कुछ भी बोलता है ऐसा लगता है कि वो बस बुरा ही बोल रहा है, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट स्वीट वॉइस, उनकी टोन ही ऐसी होती है कि वो चिल्ला रहे हो या डांट रहे हो, दे हैव वेरी हार्श टोन। व्हाई डज इट हैपन कि जब आप वचन योग का दुरुपयोग करते हो, आप यू यूज वर लैंग्वेज, आप गालियां देते हो, आप बुराई करते रहते हो किसी की, सो दैट्स हाउ यू नो आप मन वचन का, आप मन में बुरा सोचोगे तो आपको मानसिक, यू नो मेंटल, यू हैव ऑलवेज सिचुएशन, आप हमेशा मन में कुछ ना कुछ रन हो रहा है, आप किसी ना किसी के बारे में सोच रहे हो, सो लेटर समथिंग सच वुड हैपन कि आपको कुछ ना कुछ सोचना ही मिलेगा, बस कोई ना कोई टेंशन ही रहेगी, दैट्स मन योग। तो ये तो योग के कारण हो गए, बट दीज आर वेरी वेल, जो पुराने बन गए वो तो बन गए. वॉट यू कैन डू इज यू कैन ट्वीक इन योर प्रेजेंट कषाय. आप वर्तमान कषायों को 5 अनुव्रतों से, 3 गुण व्रतों से, 4 शिक्षा व्रतों से, 7 व्यसन के त्याग से, रात्रि भोजन के त्याग से, छना पानी पीकर, मध्य मांस मधु का त्याग, इतने सारे ये जो जितने भी हमको बाहर की क्रियाएं बताई गई हैं, इनके द्वारा हम कषायों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं. उनको खत्म तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि खत्म करने के लिए तो गुप्ती चाहिए, आत्मा में डूबना पड़ेगा. बट नॉर्मलाइज करने के लिए दीज आर लाइक यू नो जैसे ऑपरेशन के पहले एनेस्थीशिया दी जाता है टू प्रिपेयर. तो सिमिलरली ये वाले सब उस आत्मा को नॉर्मलाइज करने के लिए बैक इनटू दैट कंडीशन इन विच द मेडिकेशन कैन हैपन. सो दिस इज दीज आर द प्रोसेसेस. ठीक है.
हाँ.
एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ यहाँ तक? Anybody has any questions?
अनुपम जी, अभी आपने वो जस्ट से भाषा का वगैरह बोला कि तो कई 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 लोगों की तो भाषा वैसा लगता है कि मैं भी वो हम सबकी भाषा तो नहीं जानते, मगर कई लोगों की भाषा वैसे हमको समझ में ना आवे, परंतु ऐसा लगता है कि इतनी वो के क्या है कि झगड़ा करते ऐसा वो उन लोगों की भाषा होती है, बोलते हैं लाउडली हार्श वो चाइनीज लोग वगैरह होते हैं, वो इतना वो वैसा हार्श लैंग्वेज सुनने में हमको ऐसा लगता है.
नहीं तो that is their language. See, even like when a donkey speaks, तो वो भी हमारे कान को soothing नहीं होता है, but that doesn't mean कि वो scream कर रहा है, वो उसकी language है. But when आप deliberately किसी को उकसाने के लिए या चिल्लाने के लिए या hurt करने के लिए या अपनी authority दिखाने के लिए pride में जब आप language का use करते हैं, it all attracts all sort of. देखो, आप कुछ भी मोशन करेंगे, 7 कर्म तो आ ही रहे हैं. तो हम जब भी डिस्कशन करते हैं कि किसी ने मायाचारी करी तो उसको तिरंज गति का होगा, तो ऐसा नहीं है. मायाचारी करी तो उसको ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी अंतराय वो सब भी बंध रहा है, बट उसकी प्रमुखता है. सो इट इज जस्ट टू हाईलाइट. सो सी, एनी इमोशन, एनी कषाय का परिणाम वो अट्रैक्ट तो सारे कर्मों को कर रहा है. तो जब डिस्कशन यहाँ पर होता है, तब हम जो मुख्य मेन विक्टिमाइज्ड कर में जो आने वाला है, हम उसके डिस्कशन करते हैं. तो जब भी आप किसी को फिजिकली हर्ट करते हैं, तो उससे जो आपको फिजिकली हार्म करें, फिजिकली अंतराय करें, ऐसे कर्म आते हैं. जब आप किसी को वोकली हर्ट करते हो बोलकर, तो फिर आपको भी ऐसे उदय मिलते हैं कि आपको बोलकर वोकली कोई हर्ट. तो ये प्रमुखता से कथन है. बाकी ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैपन. तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा सामने वाले के, नॉट बाहर का वॉल्यूम और पिच कितना है, उसका आंतरिक कषाय परिणाम कितना है. दैट विल ओनली डिसाइड. देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला जा रहा है, इज गोइंग, एंड आप भी सामने से आ रहे हो, ही इज वेरी 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 कॉन्शियस ऑफ हिज वॉकिंग एंड एवरीथिंग, बट समहाउ सडनली समबडी कॉल्स हिम पीछे से, ही लुक्स बैक एंड सडनली आप उस बोर्ड से आ रहे थे और आप उसके सामने आते हैं, यू गाइस यू नो जस्ट टकरा जाते हैं, राइट? सो सी, उसका आप यू आर हर्ट, उसका इंटेंशन नहीं था, तो फिर टकराए क्यों? क्योंकि आपके भी तो कर्म का उदय है, राइट? तो समटाइम्स इफ समबडी इज स्क्रीमिंग, इट इज पॉसिबल दैट पर्सन इज नॉट इन हिज कषाय परिणाम, बट यू नो इट्स नॉट. मे बी कई लोग अनकॉन्शियसली नींद में तेज बोलने लगते हैं, तो उनका कषाय परिणाम वहां पर नहीं है, बट इट माइट बी कि आपके वो कर्म का उदय हो. तो मेरा बंध मेरे कषाय परिणाम से, नॉट मेरी भाषा आगे कैसे आ रही है, राइट? एंड आपके सामने जो मैं दिख रहा हूँ, वो आपकी आपके कर्म के उदय से, हाउ आई एम बिहेविंग विद यू, इट्स नॉट बिकॉज आई हैव अ फॉल्ट. तो आपको टू वे यहाँ पर व्यू रखना पड़ेगा. जब सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है, तो डोंट लुक यार वो कैसा गंदा बोलता है, कितनी बुरी गालियां देता है, क्या करता है, बिकॉज वॉट एवर ही इज डूइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर कर्म का उदय. वो आपके पुण्य पाप के हिसाब से बोल रहा है. एंड नाउ फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव वॉट एवर ही इज डूइंग, तो उसके अंदर का कषाय परिणाम है तो उसके हिसाब से उसको बंद होगा, या फिर वो अभी अपने होश में ही नहीं है तो उसको अपने प्रमाद अपनी अविरति से वहां पर योग के कारण और जो भी कषाय परिणाम उसके कारण बंद होगा. इट्स नॉट लाइक के यू नो कुकुरुकू, यदि मुर्गा डेली करता है सुबह सुबह और सबके कान में, कई लोगों के कान में चुभता होगा, तो दैट डजंट मीन कि उसको इतने सारे लोगों का पाप पड़ रहा है जगाने का. वो अपने मस्ती में आनंद में कर रहा है तो उसको अपने कषाय के हिसाब से बंद होगा. और इतने लोगों को तो परेशानी हो रही है ना कि वो उनके कर्म का उदय है, उसकी गलती नहीं है मुर्गे की. वो नहीं भी चाहता तो कोई और वहां पर हॉर्न बजा के चला जाता बहुत तेज, बिकॉज इट हैड टू कम फ्रॉम समवेयर. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट आउटर वर्ल्ड यू ऑलवेज हैव टू सी चश्मा ऑफ आपके खुद का कर्म का उदय, नॉट दूसरे का दोष. दैट इज उपगूहन अंग. दूसरे का दोष नहीं, अपने दोषों को देखना, दूसरे के गुणों को देखना, अपने कर्मोदय को देखना, दूसरे के अपराध को नहीं देखना. एट द सेम टाइम जब आप ये प्रवृत्ति कर रहे हैं दूसरों के प्रति, तो आपको अपने कषाय परिणाम देखने हैं कि एम आई डूइंग इट इन्फ्लुएंस बाय माई ओन कषाय परिणाम और इज इट जस्ट हैपनिंग एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट. दैट वे तो अपने कषाय परिणामों को, और जब दूसरों की क्रियाओं को देखें तो अपने कर्म के उदय को. तो इन दोनों में हमारा ही सेल्फ इवेल्युएशन चलना चाहिए, हम दूसरे के बारे में क्यों सोचें इतना. राइट, ठीक है. एनी क्वेश्चंस? वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड अवर टाइम. ठीक है, आप लोग बंद के बारे में सोचिएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बंद का डिस्कशन करके फिर संवर और निद्रा की चर्चा करते हैं. ठीक है, एनी क्वेश्चंस आप सोचिएगा, हम क्लास में टेकअप करते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, ओके. चिन्मानी से भी करते हैं. जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो हसाते तिहु भोग. नौवाणी में कर लो.
थैंक यू अनुभव जी. जय जिनेन्द्र.
थैंक यू.